ओम शांति। सबको अच्छा लग रहा है? हाँ, नाश्ता किया सभी ने? ज्यादा तो नहीं किया ना? हाँ, सारा दिन पढ़ाई पढ़नी है ना? वहां तो आपके पास थोड़ा ही टाइम होता है, सुबह का क्लास करते हैं और फिर भागते हैं, घर संभालना, नौकरी पर जाना। इसलिए बाबा यहां बुलाते हैं। बड़े बड़े स्थान बाबा ने बनाए ताकि बेहद का परिवार आवे, आराम से रहे, और कोई कारोबार नहीं, जवाबदारी नहीं, अपनी उन्नति करें, तपस्या करें, खुद को देखें। बाबा का ज्ञान मिलते ही हम बाबा के पक्के और सच्चे ब्राह्मण बच्चे बन गए, बन गए ना? बाबा की ज्ञान की शक्ति से दिव्य बुद्धि प्राप्त होती है, सत असत की समझ आती है, सत्य ज्ञान परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति देता है। तो जैसे ही ज्ञान मिला, हम कल्प पहले वाली देवता घरानी की आत्माएं जाग गई। हमें समझ में आ गया कि सही जीवन क्या है। पवित्र जीवन बना, नियम संयम वाला जीवन बना, हमारी दिनचर्या योगी की बन गई, हमें कोई मुश्किल नहीं लगा। लगा मुश्किल? ये तो नहीं सोचते बाबा के बने तो सुबह जल्दी उठना पड़ता है। हाँ? नहीं ना, अच्छा लगता है। हमें कोई त्याग महसूस नहीं होता है कि भाई बाबा तो बहुत कुछ छुड़ा देते हैं, ऐसा तो नहीं लगता है ना? बल्कि हमें ये महसूस होता है कि जब से बाबा के बने तब से सही जीवन शुरू हुआ। पवित्रता अपनाई, ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, व्यसन फैशन फिल्में होटलें छोड़ी, अन्न शुद्धि का नियम जीवन भर के लिए धारण हो गया। अब हमें अपने जीवन पर खुशी है कि यथार्थ जीवन अब शुरू हुआ। तो हमारे जीवन का फर्स्ट चेंज है कि जो कुछ अपवित्रता थी, असत्यता थी, जो कुछ असार था, व्यर्थ था, वो छूट गए, हम ब्राह्मण बन गए। आहार विहार शुद्ध बन गए, व्यवहार शुद्ध बन गया, हमारी पहरवाइस संग वांचन दिनचर्या उसमें जो कुछ अशुद्ध था, अपवित्र था, असार था, वो खत्म हो गया। वो ज्ञान का फर्स्ट चेंज है। हम पवित्र ब्राह्मण बने, योगी बने, सच्ची ज्ञानी तो आत्मा बन गए। हम कलयुग से निकल गए, संगम पर आ गए। अब हमारी यात्रा कहां तरफ है? हाँ, परम धाम। वाया परम धाम, पर यात्रा कहां की है? सतयुग की है। परम धाम के लिए बाबा कहते हैं, पवित्र आए थे, पवित्र बनकर वापस जाना है। इसलिए हम योग तपस्या करते हैं, ताकि जन्म जन्मांतर का सिर पर जो विकर्मों का बोझ है, उसको खत्म कर सके। विकर्मों का बोझा सिर पर है, उसकी क्या निशानी? हाँ, उसकी निशानी क्या है? विकल्प आते हैं और मोटी निशानी बताओ, ठोस। बाबा कहते हैं ना कि विकारी संस्कार आदतें बार 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 विकर्म करते रहने से विकारी संस्कार आदतें बन गए। हर आत्मा में अपना अपना है, जो जिस विकार के वशीभूत रहा और वशीभूत होकर के कर्म किए तो विकारी संस्कार बन गए, जिसको हम कहते हैं पुराने संस्कार, कड़े संस्कार, पतित संस्कार। भी आदत पड़ गई, इनके वश बार बार करते रहते, तो हरेक इससे अपने आप को समझ सकते हैं कि पूर्व जन्मों में किन विकारों के वशीभूत हम ज्यादा रहे। कोई में क्रोध, कोई में लोभ, कोई में अभिमान, कोई में मोह, कोई में ईर्ष्या। हरेक अपने आप को देखते हैं तो पता चलता है। तो जैसे जैसे योग तपस्या करके खुद के पवित्र शुद्ध स्वरूप को रियलाइज करते और प्रैक्टिकली अटेंशन रखते, तो ये कड़े संस्कार धीरे धीरे डाइल्यूट होकर कमजोर होके खत्म हो जाते। इसके लिए साधना चाहिए। साधना तपस्या का अर्थ है दृढ़ता संपन्न पुरुषार्थ। योग तो रोज हम करते हैं, बाबा की याद में हम रहते हैं, परंतु लक्ष्य पूर्वक दृढ़ता से लगातार जो तपस्या अभ्यास हम करते हैं, उनको तपस्या साधना कहा जाता है। जैसे लौकिक रीति से कोई कड़ी मेहनत करके, लंबे समय की मेहनत करके फिर कोई सफलता पाते हैं तो कहते हैं ना, भाई मैंने बहुत तप किया है, ऐसे ही नहीं मिला है। हमें कौन सी सिद्धि पानी है? विकर्मों का बोझा उतारना। हम यही चाहते हैं ना, आत्मा बिल्कुल प्योर बन जाए, हल्की बन जाए। इसलिए टाइम निकाल कर विशेष तपस्या करते। तो परम धाम जाने के लिए विकर्मों का हिसाब खत्म होना चाहिए। बाबा कहते अगर विकर्मों का हिसाब रह जाएगा तो सजा खानी पड़ी, क्योंकि हिसाब तो चुकाना है। फाइनल क्लियरेंस हो रहा है, जैसे मार्च एंड में फाइनल क्लियरेंस होता है ना बैंक में, सारा वर्ष तो डालेंगे निकालेंगे, माइनस प्लस होता रहता है। वर्ष के अंत मार्च एंड में क्लियर हिसाब करते हैं कि अब आपका इतना जमा है या इतना माइनस है। तो ये ईयर एंडिंग है और अभी है, अभी हमारा क्या है, कल्प एंडिंग है। पूरे कल्प का 84 जन्मों से जो माइनस प्लस चलता आ रहा है, अब उसको लास्ट क्लियर करना। बाबा कहते 63 जन्मों का उधार है, वो चुकाना है। और क्या करना है? 21 जन्मों का जमा करना है। कितना बड़ा कार्य है संगम युग में। 63 जन्मों का माइनस का खाता खत्म करना है और 21 जन्मों का जमा का खाता करना। सिर्फ परम धाम में जाना है तो 63 जन्मों का चुकाना है। कितनी तपस्या चाहिए? दृढ़ता पूर्वक लक्ष्य पूर्वक ये संस्कार मुझे बदलने ही है। ऐसे नहीं चलता है, थोड़ा बहुत तो रहता है, नहीं। लक्ष्य ऊंचा चाहिए। कल बाबा ने क्या कहा, कौन से पुरुषार्थी बनना है? सतो प्रधान पुरुषार्थी माना पूरा निश्चय बुद्धि, पूरा वर्षा लेना। ऐसे नहीं कि ठीक है जो मिले सो बरोबर है, प्रजा तो प्रजा ही से। जिसमें लक्ष्य ऊंचा नहीं है, जिनमें सिंसियर रीति नहीं है लक्ष्य के प्रति, जो पूरा पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं, वो ऐसे कहेंगे कि जो मिला सो ठीक है। लौकिक बातों में ऐसे कहेंगे आप, तब तो कायदे सिर पूरा हक लेना चाहते हैं ना। बाप दादा की प्रॉपर्टी में थोड़ा कम मिले तो चलता है? वहां तो पूरा हक लगाते हैं ना, लड़ते हैं, केस करते हैं, पूरा हमारा हिस्सा हमें मिलना चाहिए। नौकरी करते हैं, अपनी सीनियोरिटी के हिसाब से प्रमोशन चाहते हैं ना, कि नहीं मिलेगा तो चलेगा। तो जब लौकिक प्राप्तियों में कुछ भी कम नहीं लेना चाहते, मिस नहीं करना चाहते, एक छोटी सी सौगात ना मिली हो तो हम कहते हैं ना, दीदी मेरे को नहीं मिली है, मुझे दिलाओ। भौतिक प्राप्तियां लौकिक प्राप्तियों में कमी नहीं चलने देते, पूरी प्राप्ति का लक्ष्य रखते। तो अलौकिक में पीछे रहना है क्या? क्या लक्ष्य है हरि का? पूरी प्राप्ति करनी है। जब स्वयं बाबा आए हैं देने के लिए, तो पीछे क्यों हटे? पूरी प्राप्ति करनी है, पूरा वर्षा लेना है, पूरा सतो प्रधान बनना है, पूरा पावन बनना है। अलौकिक पुरुषार्थ में ढीला रहना है क्या? हाँ, क्यों नंबरवार? बाबा ने आज भी कहा ना, नंबर वन ब्रह्मा बाबा है, पर फर्स्ट डिवीजन भी है ना, जिसमें अनेक आएंगे। तो इस अलौकिक पुरुषार्थ में हमारा लक्ष्य ऊंचा मजबूत रहना चाहिए। मुझे पूर्ण शुद्ध आत्मा बनकर सम्मान से वापस घर जाना है। बाबा कहते हैं ना, धर्मराज दरबार में सलाम न करनी पड़े, सम्मान और इज्जत से जाएं। इसलिए साधना चाहिए, तपस्या चाहिए। कल कितनी बार बाबा ने हमें कहा, याद करो, याद करो, 8 घंटा याद करो, निंद्रा कम करो, 2 बजे उठो, 3 बजे उठो, 4 बजे उठो, उठो, सुबह सुबह योग का अभ्यास। तो ये कितनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, तब तो बाबा ने इतनी बार हमें अंडरलाइन कराया। चलो ज्ञान नहीं था, देह भान में थे तो बुद्धि से भटकते रहते थे, दुनिया में देह संबंधों में, देह में वैभव पदार्थों में ही बुद्धि घूमते रहती थी। भक्ति करते थे पर सत्य ज्ञान नहीं था तो भक्ति में भी भटकते थे। अनेकों को याद करते थे, अब बुद्धि से भटकने का कोई सवाल ही नहीं। हमें सत्य मिल चुका है, भगवान मिल चुके हैं, अब उनसे ही बुद्धि लगानी है। जब भी टाइम मिलता है, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट बाबा की याद में रहे, कर्म योगी बनकर कर्म करे। लगन लगी रहे, पर हमें सिर्फ दुखों से मुक्ति नहीं चाहिए, दुखों से मुक्ति परंतु साथ साथ और क्या चाहिए, सुख भी चाहिए। जन्म जन्मांतर का अविनाशी सुख चाहिए, जिसको बाबा जीवन मुक्ति कहते हैं, कि जहां जीवन है, संबंध है, व्यवहार है, पर दुखों से मुक्ति है, सुख के संबंध है, सुख के व्यवहार है। जब दुखों से एक दो के से मिलने वाले दर्द से त्राहित तो हो जाते हैं, तो हर कोई कहता है ना कि ये दुख की दुनिया से छूटना है, सुखमय संसार चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि 21 जन्मों के लिए जमा भी करना है, सत कर्मों को जमा करना है, पवित्र बनकर बाबा की याद में आत्मा अपनी सत्य स्थिति से श्रीमत पर सत्कर्म करते हैं। अभी मौका है सत्कर्म के बीज बोने का, क्योंकि बाबा ने सत्कर्म करना सिखाए, भक्ति में दान किए, परंतु बाबा कहते हैं ना, पतित का पतित से हिसाब चला, तमो प्रधान देहभान स्थिति में आत्मा जो भी कर्म करेगी वो विकर्म ही होगा। तो संगम युग में मौका है, जब सही ज्ञान है, सही कर्मों का ज्ञान है, अभी हम जितने सत्कर्म करना चाहें कर सकते हैं। ज्ञान नहीं था, हर कर्मेंद्रिय से पाप कर्म किए, विकर्म किए, किए कि नहीं किए, किए ना, हर कर्मेंद्रिय से भूले हुई पाप हुए, विकर्म हुए। आंखों से भी विकर्म किए, गंदी देह नजर से दूसरों को देखा, देखो अपने आप को, स्वदर्शन करो। तो ज्ञान नहीं था तो हर कर्मेंद्रिय के वश, जिनको इंद्रिय रस कहते हैं, इंद्रिय रसों के वश कितने विकर्म किए, गुस्से में आंखें बड़ी करके दिखाई दूसरों को, कानों से तेरी मेरी इसकी उसकी कितनी व्यर्थ बातें सुनी की, पर चिंतन निंदा ग्लानी, मुख से की, कानों से सुनी भी, उसमें हामी भी भरी। कहते हैं ना भी आग में तेल डालने का काम किया, नाक चढ़ाया, मुंह बिगाड़ा, कितनी बातों में विकर्म करते रहते। बल्कि अपने आप को अच्छी तरह से देखो, बाबा के बच्चे ब्राह्मण पवित्र ज्ञानी योगी आत्मा बनने के बाद भी अटेंशन नहीं रखते हैं, छोटी छोटी बातों में अवस्था बिगाड़ते हैं, व्यवहार बिगाड़ते हैं, विकर्मों का हिसाब बनता ही रहता है। भाई कर्मातीत बनना है तो पहले विकर्माजीत बनना पड़ेगा। अभी भी हमारे विकर्मों का हिसाब आपस में होता ही रहता है, छोटी छोटी बातों में मूड ऑफ हो जाना, असहयोग कर देना, ईर्ष्या द्वेष में बातें करना, ये सब क्या है? हिसाब बन ही रहे, कर्मातीत बनना है, विकर्मों का हिसाब क्लियर करना है। तो पहला लक्ष्य तो ये बनना चाहिए ना कि अब नए कोई पाप मुझे नहीं करने, किए हुए पापों का बोझा उतारना है। इसलिए एक पुरुषार्थ पवित्र बनने का हुआ है, पर सूक्ष्म अटेंशन कितना चाहिए। भाई एक है नाह धोकर अच्छी तरह शरीर को साफ करना। रोज नहाते हैं तो भी 8-10 दिन में कहेंगे आज तो अच्छी तरह स्नान किए, रगड़ रगड़ के मैल निकाला, बाल धोए, आंखें नाक कान मुंह साफ किए, नाखून काटे, अच्छी तरह से नहाए। रोज स्नान करने के बावजूद भी कहीं न कहीं मैल दाग लग ही जाते हैं, गंदगी जमा हो जाती है, तो हम साफ करते हैं ना। तो ब्राह्मण बनना माना जैसे साफ होना, अपवित्रता देहभान विकारों की मैल को दूर करना। परंतु केवल स्नान कर लिया इससे काम पूरा हो जाता है? नहीं। स्नान करने के बाद अच्छी तरह से ड्रेसअप होते हैं, अच्छी तरह से ड्रेसअप होते हैं ना, मुंह पोछेंगे, बाल ठीक करेंगे, हाथ पांव कान नाक सब अच्छी तरह से पोछेंगे और फिर मेकअप करते हैं, ड्रेसअप होते हैं। तो हमारा भी लक्ष्य क्या है? मनुष्य से देवता बनना, नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनना, यही लक्ष्य है ना सबका। हाँ, बाबा कहते हैं ना तुम कौन सी पढ़ाई पढ़ते, मनुष्य से देवता बनने। जैसे स्नान के बाद ठीक से ड्रेसअप होना, आवश्यक मेकअप करना जरूरी है। इसी प्रकार ब्राह्मण बनना माना अच्छी तरह स्नान करना, परंतु देवता बनना माना ब्राह्मण बनने के बाद दिव्य गुणों का श्रृंगार करना। इसलिए बाबा कहते हैं देवता बनने का पुरुषार्थ ब्राह्मण बनने के बाद ही कर सकते हैं। ब्राह्मण बनना, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना, सच्चा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण बनना अर्थात पवित्र बनना, शुद्ध बनना, जो कुछ अशुद्धि अपवित्रता है उनको निकाल देना। तो ब्राह्मण बनना वो योग्यता प्राप्त करना है जिससे देवता बनने की पढ़ाई कर सकते। भाई ट्वेल्थ में आप इतना परसेंटेज लाएंगे तो आपको मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, आईटी में, फलाने में एडमिशन मिल सकता है। ब्राह्मण बन गए तो काम पूरा नहीं हो गया है। कई यही सोचते हैं और देखते हैं बस हम पवित्र रहते हैं, अन्न शुद्धि का नियम पालन करते हैं, रोज ज्ञान योग करते हैं, खुश हो जाते हैं हम ब्राह्मण बन गए, ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए। बिल्कुल खुशी की बात है कि हम पक्के सच्चे ब्राह्मण बन गए, पर ब्राह्मण बनने के बाद हम योग्य बन गए हैं अब देवता बनने की पढ़ाई के लिए। पवित्रता प्लस दिव्य गुणों का प्रभाव मिलाकर दिव्यता कहा जाता है। दिव्यता माना पवित्रता प्लस दिव्य गुणों की धारणा, इससे हमारे में दिव्यता आती है। इसलिए दिव्य गुण, डिवाइन मैनर्स भी हमें अपने आप में धारण करने हैं। मेकअप करते हैं तो फर्स्ट चेहरे पर क्या लगाते हाँ, ताकि हमारा मेकअप बना रहे, फाउंडेशन क्रीम लगाते हैं ना, फाउंडेशन क्रीम लगाते हैं पहले, फिर जो कुछ लगाना है बाद में लगाते हैं। ऐसी पवित्रता फाउंडेशन क्रीम है, बिना पवित्रता हर गुण भी संपूर्ण नहीं बनता है। जैसे बाबा कहते हैं बर्तन साफ हो, बर्तन सोने का हो तो हर धारणा ठीक होगी। अगर बर्तन गंदा है उसमें जो भी कोई अच्छी चीज भी डालेंगे तो वो पॉल्यूटेड हो जाएगी, है ना, मिक्सचर हो जाएगा गंदगी का। तो उस वैल्यूएबल चीज की जो स्पेशलिटी है वो रहेगी नहीं, मिक्स हो जाएगा। इसलिए पवित्रता फाउंडेशन है। बाबा के ज्ञान और योग की शक्ति से पवित्रता हमारे जीवन में आ गई। बर्तन साफ है फिर आपको कोई उसमें गंदगी डालने का मन नहीं करेगा। घर अच्छी तरह साफ करते हैं तो कॉन्शियस रहते हैं ना कि अरे भाई ऐसे पांव लेके नहीं आओ, ये चीज ऊपर नहीं रखो, इधर रख, क्योंकि वो स्वच्छता का जो सुख है, जो सुकून महसूस होता है, वो हम बरकरार रखना चाहते। इसलिए बाबा कहते हैं पवित्र बनने के बाद का पुरुषार्थ है दिव्य गुणों को धारण करना। आपने पक्का फाउंडेशन बना लिया, बहुत गहरा मजबूत फाउंडेशन डाला, पर फाउंडेशन डाल के बैठे रहेंगे क्या? काम पूरा हो जाता है? नहीं। इतना मजबूत फाउंडेशन किस लिए बनाया? पूरा भवन बनाने के लिए, पूरा मकान बनाने के लिए। इसी प्रकार पवित्रता का इतना ऊंचा शक्तिशाली फाउंडेशन हम सभी ने डाला है। पवित्रता की बात दुनिया में कोई कर नहीं पाता है। इतने बड़े धर्मात्मा महात्मा आए, कोई पवित्र बनने की बात कर नहीं सका। सारे धर्म संप्रदाय मठ पंथ पवित्रता की बात पर आके अटक गए, बस वो लेसन कोई नहीं सिखा सका, वो बाबा ने सिखाए। तो बाबा का शुक्रिया कि बाबा ने हमें गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान बनाए। चलो सन्यासी पवित्र बने पर घर बार छोड़कर बने, और हम सभी बाबा के बच्चे कितनी शक्तिशाली आत्माएं हैं, घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहते। इतना ऊंचा शक्तिशाली फाउंडेशन ब्राह्मण जीवन इसलिए बनाया ताकि हम देवता बन सके, दिव्य गुणों से संपन्न बने। दिव्य गुणों के बिना हम योग और पवित्रता के सुख की अनुभूतियों को संभाल नहीं सकेंगे। जैसे आप बहुत अच्छा योग करते हैं, चारों ओर से डिटैच होकर बाबा की लगन में मगन होके बैठते, बहुत अच्छी हल्केपन न्यारेपन की अनुभूति होती है, बाबा की याद का आनंद और सुख महसूस करते। पर योग पूरा हुआ और बातें करने लगेंगे तो ज्यादा आवाज में आएंगे तो वो अनुभूति खत्म हो जाएगी जल्दी। जब अच्छा अनुभव करते हैं तो हमें आवाज में आना भी अच्छा नहीं लगे, है ना? हम इशारों से कामकाज करते क्योंकि वो अनुभूति संभालनी है। वहांतर मुक्ता चाहिए, बहिर्मुक्ता नहीं। अब दिव्य गुणों का ज्ञान तो हम सबको है, कौन कौन से दिव्य गुण हैं बताओ। हर्षित मुक्ता, नम्रता, मधुरता, सरलता, गुण ग्राहकता, गंभीरता, धैर्यता, कितने गुण हैं। मधुबन में पढ़ा है ना, दिव्य गुणों का लिस्ट पढ़ा है ना, दिव्य गुणों का गुलदस्ता किताब भी है अपनी, हर गुण के बारे में इसमें बताया। पर जैसे आज बाबा ने कहा, अनुभवी स्वरूप बनना है, प्रैक्टिकल में ये गुण। हर कर्मेंद्रिय को कमल फूल समान पवित्र बनाना है और फिर दिव्य गुणों से उन कर्मेंद्रियों का उपयोग करना है। भाई मुख से बोलना है, पर बाबा ने सिखाया है ना कैसे बोलना है। हर कर्मेंद्रिय का दिव्य गुणों से युक्त होकर उपयोग करना है। भक्ति में मौन करते, आंख बंद करते, उपवास करते, यहां बाबा कहते हैं कर्मेंद्रियों का दिव्य गुणों से युक्त होकर प्रयोग करना है। मौन नहीं करना है, आवश्यक जरूरी बोलना है। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सारयुक्त बोलो, ये दिव्य गुण धारण करने तो हमारे हर कर्म सत्कर्म होने लगे। कर्मेंद्रियों का सही उपयोग करने लगे। इसलिए देवताओं की पहली महिमा कौन सी है? सर्वगुण संपन्न। हमें सर्वगुण संपन्न बनना है। उसकी सहज विधि बाबा ने हमें सिखाई। अब 32 गुण, 36 गुण, 56 गुण, कितने दिव्य गुण है। सभी दिव्य गुणों को धारण करने का सरल पुरुषार्थ है जो बाबा ने हमें सिखाया कि आत्मा के अनादि 7 गुणों का स्वरूप बनो। इन 7 गुणों से ही सर्व दिव्य गुण बने हैं। ये 7 गुणों का स्वरूप बनेंगे, ऑटोमेटिक सर्वगुण धारण होते जाएंगे। जैसे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, मूल रंग कौन से हैं? 3 मूल रंग है, 3, लाल, पीला और नीला। इस 3 रंग से, केवल 3 मूल रंग से आज 150 से भी अधिक कलर्स बने। जब आप कोई पेंट खरीदना है जाते हैं तो पूरा दिखाते हैं ना उसका, तीन रंग से 150 रंग बने। ऐसे मूल आत्मा के सात गुणों से ही वही मूल गुण कुल मिल करके वैरायटी दिव्य गुण बने हैं। इसलिए बाबा हमें रोज पुरुषार्थ क्या कराते हैं, रोज हम साइलेंस में बैठकर पहला अभ्यास क्या करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन, जो हमारी ओरिजिनलिटी है, रियलिटी है, जो हमारे मूल गुणधर्म हैं उनको रियलाइज करते हैं। मैं शांत स्वरूप, शांति स्वरूप बनेंगे अपने आप, आपके अंदर अंतर्मुखता, धीरज, सरलता, सौम्यता, अपने आप ये गुण आते जाए। पता है ना सात गुण कौन से हैं? ज्ञान माना सत्य से पवित्रता आती है, पवित्रता से शांति और प्रेम आते हैं, इससे सुख और आनंद आता है और आत्मा शक्तिशाली बनती है। देखो शांति से कार्य करना है, गुस्से से, जल्दबाजी में, अधीर्यता से नहीं करना है, परंतु आनंद स्वरूप बनकर करना है, खुशी से करना है। जो कार्य खुशी से करते हैं उसकी वैल्यू होती है। आप काम भी करते हैं और साथ साथ बड़बड़ भी करते हैं, मैं ही करती हूँ और कोई करता ही नहीं है, तो फिर आपके करने की वैल्यू नहीं होगी। इसलिए सातों गुण सर्व गुणों का आधार है। संगम युग में बाबा सात गुणों का सागर हमें सात गुणों का स्वरूप बनाता है। देवता बनना माना दूसरी महिमा कौन सी है? 16 कला संपूर्ण बनना, ताकि हर कर्म परफेक्ट एक्यूरेट हम कर सके। सो कहते हैं वे काम तो हर कोई करते हैं, पर एक कला से करना वो कर्म आनंद देता है, सुंदरता का अनुभव कराता है। तो बाबा ने हमें, हम कर्मेंद्रियों से काम तो करते ही हैं, देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, परंतु कैसे करना है वो विधि, वो युक्ति बाबा ने हमें सिखाई कि उठना है तो कैसे, बैठना है तो कैसे, चलना है तो कैसे, बोलना है तो कैसे। हर कर्म की कला बाबा हमें सिखाए, ताकि हर कर्म परफेक्ट, एक भी कर्म ठीक नहीं होगा तो सबका ध्यान उसी पर जाएगा। भाई यहां सब चीज व्यवस्थित रखे, पर ये चीज ऐसी हो तो आपका ध्यान कहां जाएगा कि स्टेज अच्छा तैयार किया है पर ये ठीक नहीं रखा है ना, इस पर ध्यान जाता है। एक कमी, एक डिफेक्टेड चीज ध्यान खींचती है। इसलिए बाबा कहते हैं संपूर्ण बनो संपन्न बनो। हर धारणा हर गुण की चाहिए, हर शक्ति की चाहिए। भौतिक रूप से भी देखो घर में आप क्या चाहते हैं कि जो आवश्यक सब साधन हो सुविधाएं। चलो भाई बहुत ज्यादा हमें कोई वैभव का प्रदर्शन नहीं करना है, पर जो जरूरी है वो साधन तो रखने हैं ना, ताकि सुविधा युक्त जीवन जी सके। एक भी साधन की कमी है तो बार बार यही सोचते हैं ना, बस अब ये लाना है, हमारे पास ये नहीं है। हमारे पास वॉशिंग मशीन भी है, फ्रीज भी है, हमारे पास ग्राइंडर भी है, सब कुछ है, बस ये नहीं है, ये हमें लाना है। खटकता है ना, एक भी साधन की कमी खलती है, तकलीफ महसूस कराती है। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि अनेक गुण हैं पर एक गुण नहीं होगा, कोई एक गुण शक्ति की कमी होगी तो वो ही असंतुष्ट करती रहेगी, वो ही आपको अप्रसन्न करती रहेगी। इसलिए अगर सदा संतुष्ट सुखी प्रसन्न बनना है तो हर गुण चाहिए, हर शक्ति चाहिए। आई बात समझ में, क्यों बाबा संपन्न बनने की बात कर। जो अभाव होगा वो ही अनुभव में आता रहेगा, इसलिए भरपूर करना। ब्राह्मण पक्का सच्चा बनने के बाद ये पुरुषार्थ अब हमारा चलना चाहिए। आज हम पवित्र बने, योगी बने, सच्चे ज्ञानी बन गए, अच्छे सेवाधारी बन गए, पर कोई न कोई छोटे मोटे गुण शक्ति की कमजोरी है कि नहीं है? कोई को ज्यादा बोलने की कमी है, कोई को मूड ऑफ करने की कमी है, कोई रुस जाएंगे, ईर्ष्या वैर द्वेष, कोई ना कोई छोटी मोटी गुण शक्ति की कमी है, जिसके कारण ही इतनी ऊंची धारणाओं के बाद हम साधारण ही लगते हैं। क्यों देवताई नहीं लगते? पवित्रता और तपस्या की धारणा के बाद भी छोटे मोटे अवगुणों के कारण, कमजोरियों के कारण हम साधारण महसूस होते हैं। हमारे आगे पीछे, हमारे लौकिक या अलौकिक, हमारे बारे में कौन सी बातें करते, कौन सी बातें करते, कमजोरी की बातें करते हैं ना, कि ये बहुत अच्छे हैं परंतु बस हमारी ग्लानी करते हैं ना। तो ये छोटी मोटी कमजोरियों के कारण ही हमारी एब्सेंस में हमारे आगे पीछे ग्लानी की बातें होती। तो क्यों हम ये कमजोरी रखें, क्यों रखें? जब लक्ष्य बना लिया है कि भगवान हमें आप समान बना रहा है, तो हमें क्यों कमी रखनी? इसलिए हरेक अपने आप को देखो, जिस गुण शक्ति की कमी है, जो अवगुण है, कमजोरी है, उसको खत्म कर। ये है दिव्यता का श्रृंगार कर। बाबा कहते हैं ना, सर्वगुण संपन्न कहां बनना है? अभी संगम युग में बनना है, न कि सतयुग में जाके हम बनेंगे। वहां बनने की कोई विधि नहीं है, बने हुए वहां जाके प्रारब्ध भोगेंगे। बनाने वाला भी अभी है, उसका ज्ञान भी बाबा अभी दे रहा है, इसलिए अभी हम बन सकते। बाबा कहते हैं ना, जो दिल से पुरुषार्थ करेगा तो बाबा उनको ग्रेस मार्क्स भी देकर पास करेगा। तो हमारी योग की शक्ति, हमारी रूहानियत इन छोटे मोटे अवगुणों के कारण खत्म हो जाते हैं। ज्ञान योग से जमा की हुई शक्ति वहां, बाबा कहते हैं ये लीकेजेस है, वहां से बह जाती। आप स्टोव में हवा पंप मारते रहो पर लीकेज होगा तो वहां से बह जाएगा। पूरा स्टोव अच्छा है, एक छोटी सी लीकेज है, चलेगा? पूरी नाव अच्छी है, एक छोटा सा छेद, चलेगा भाई? चलेगा, चलेगा नहीं। कहते हैं ना, एक छोटा सा छेद पूरी नाव को ले डूबेगा। तो हमें भी पास विथ ऑनर होना है, सच में देवता बनना है, तो हमें अपने आप को देखना है कि किन गुणों की कमी है। कोई कहते ना, भी मेरे में सब कुछ है, बस थोड़ी धीरज नहीं, हर बात में जल्दबाजी उतावलापन हो जाता है। पर वो ही एक चीज आपकी अप्रिय लगती है ना सबको, बाकी बहुत अच्छाई है, पर वर्णन में यही आएगी कि ये हर रीति से अच्छे पर इतनी जल्दबाजी करते हैं, सबको टेंस कर देते हैं, है ना? तो भट्टी में आए हैं, ये मौका है अपने आप को देखने का, साइलेंस में बैठकर। और लक्ष्य बनाना है कि इन छोटी मोटी कमजोरियों ने हमें साधारण बना के रखा है, इसलिए इन कमजोरियों को खत्म कर हमें बिल्कुल दिव्य बनना है। उसके लिए बाबा ने सरल विधि सिखाई। 16 कला माना कौन कौन सी 16, वो बात नहीं। 16 कला संपूर्ण परफेक्शन के लिए यूज किया जाता है। कोई सर्वांग संपूर्ण ठीक है तो कहेंगे भाई ये तो 16 कला सुंदर है, 16 श्रृंगार किया है, ये बात 16 आनी सच है, माना पूर्ण सच है। आज चंद्रमा 16 कला से खिला है, माना फुल मून है। तो ये 16 कला संपूर्ण परफेक्शन के लिए यूज किया जाता है। और बाबा कहते हैं एक कला हस्तगत कर लो तो सब कला आती जाएगी। और वो कला कौन सी है जो बाबा हम बच्चों से चाहते हैं, वो है बुद्धि योग की कला। जब चाहो, जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो, उस स्थिति में मन बुद्धि टिका सको, ये है बुद्धि योग की कला। योग से बुद्धि एक्यूरेट बनती है, इससे एक्यूरेट कर्म होते। देखो हमारे कर्मों को सुधारने के लिए बाबा ने क्या किया, सत्य ज्ञान देकर बुद्धि को ठीक किया ना। हमारा बुद्धि योग एक्यूरेट बाबा बना, इसलिए बाबा कहते हैं अंतिम पेपर कौन सा होगा, यही होगा। उस समय सेकंड में अपनी स्थिति में स्थित हो जाना होगा, टाइम लगाया तो फेल, बाबा कहते हैं। तो ये है बुद्धि योग की कला। आज भी बाबा ने नहीं बताया वरदान में, अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी साकारी कर्मयोगी, अभी अभी विश्व सेवादार, आज या कल बताया ना, कल बाबा ने बताया। ये अभ्यास, ये एक्सरसाइज क्यों करनी, ताकि बुद्धि एक्यूरेट बने। तो अपने आप हमारे हर कर्म यथार्थ परफेक्ट होंगे। तीसरी महिमा कौन सी है दिव्यता के श्रृंगार में, संपूर्ण निर्विकारी, कोई भी विकार का अंश भी न रहे, सिर्फ पवित्रता ब्रह्मचर्य की बात नहीं है, पवित्रता की धारणा से बाकी विकार अपने आप 50% डाइल्यूट हो जाते, कमजोर हो जाए, उसका जोर आधा हो जाए। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि और विकार चलाने हैं, नहीं, वो हमें थोड़ा और पुरुषार्थ करके खत्म करना है। कोई पवित्र योगी बन के गुस्सा करता रहे तो चलेगा, सबका प्रिय बनेगा, नहीं, सब कहेंगे ये बहुत गुस्सा करते हैं, हम इनके साथ सेवा नहीं करेंगे, हम अपने आप सेवा कर लेंगे पर हम इनके साथ सेवा नहीं करेंगे, ये बहुत गुस्सा करते रहे। इसलिए कोई भी विकार अच्छा नहीं है। विकार अच्छा होता है, विकार माना विकार, हर विकार आत्मा को गिराने वाला है। इसलिए क्रोध भी नहीं, लोभ लालच भी नहीं, मोह भी नहीं। मोह विकार का पॉजिटिव रूप है। इसलिए कोई सोचेगा कि वो बुरा नहीं है, परंतु नहीं, वो हमारे विवेक को मार देता है, सत्य की परख नहीं रहने देता। इसलिए कहते हैं ना, मोह में अंधे हो गए। मोह में फंसे रहेंगे, बुद्धि बाबा तक जाएगी ही नहीं, भगवान का प्यार ले नहीं सकेंगे, क्योंकि आत्मा के मोह में फंसे हुए। अभिमान हमें गिराता है, इसलिए संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए बाबा ने एक पुरुषार्थ पर जोर दिया, संपूर्ण आत्म अभिमानी बनना। देह अभिमान विकारों की जड़ है। देह अभिमान में रहेंगे, कोई ना कोई रूप में विकार उगते ही रहे। संपूर्ण आत्मभिमानी बनना है। इसलिए रोज कितनी बाबा महत्व देते। तो आज का ये टॉपिक रखने के पीछे यही लक्ष्य था कि हम ब्राह्मण बनकर बैठ न जाएं, संतुष्ट हो जाए नहीं कि बस हम तो बन गए। नहीं, हमारी मंजिल है दिव्यता धारण करना, उसके लिए ये पुरुषार्थ। ओम शांति।